एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जा रहे हैं जो एक कॉफी के कप से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं हॉवर्ड शॉल्स और उनकी किताब पोर योर हार्ट इनटू इट की, स्टारबक्स कैसे बना एक कप से शुरू करके।
सही, और ये सिर्फ एक कॉफी कंपनी की कहानी नहीं है ना, इसमें वो जुनून है, एक विजन है और कुछ इंसानी कदरों की बात भी है।
एग्जैक्टली, ये कहानी हॉवर्ड शॉल्स की है जिन्होंने सिएटल की एक छोटी सी, मतलब बहुत छोटी सी कॉफी रोस्टर कंपनी को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा ये कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे आप अपने दिल की सुनकर, अपने उसूलों पर टिके रहकर और सबसे जरूरी लोगों को साथ लेकर एक कामयाब और टिकाऊ कारोबार बना सकते हैं।
और आज के जमाने में तो ये और भी जरूरी लगता है। अक्सर लगता है ना कि या तो आप पैसा कमा लो या फिर अच्छे सिद्धांत रख लो, दोनों साथ चलना मुश्किल है।
हाँ, यही धारणा तो तोड़ी शुल्स ने। ये कहानी दिखाती है कि अच्छा करना मतलब समाज के लिए, कर्मचारियों के लिए अच्छा करना, और अच्छा कमाना यानी प्रॉफिटेबल होना, ये दोनों चीज़ें साथ साथ हो सकती हैं, बल्कि होनी चाहिए।
तो क्या ये कह सकते हैं कि उन्होंने बिजनेस करने के जो पुराने तरीके थे उनको एक तरह से चैलेंज किया?
बिल्कुल, पूरी तरह से उन्होंने साबित किया कि भाई, कर्मचारियों का ख्याल रखना, समाज की फिक्र करना, ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं, ये आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। उनका मानना था कि आप कैसे कमाते हैं ये उतना ही जरूरी है जितना कि आप कितना कमाते हैं। तो चलें इस सफर को शुरू से देखें।
हाँ बिल्कुल, तो शुल्स की शुरुआत कोई बहुत अमीर परिवार से तो नहीं थी, काफी आम पृष्ठभूमि थी शायद।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका बचपन ब्रुकलिन के कैनार्सी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में बीता। एक लोअर मिडिल क्लास परिवार था।
अच्छा,
लेकिन एक घटना हुई उनके बचपन में जिसने उन पर बहुत गहरा असर डाला। उनके पिता ट्रक ड्राइवर थे और काम पर उन्हें काफी गंभीर चोट लग गई। और उस वक्त शायद वो सब सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं था जो आज है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस मुआवजा
कुछ भी नहीं।
ना, हेल्थ इंश्योरेंस ना कोई वर्कर कॉम्पेंसेशन। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, पैसों की तंगी और वो जो एक बेबसी का एहसास होता है। शुल्स ने वो सब बहुत करीब से देखा।
मुझे लगता है यहीं से वो चिंगारी जली होगी एक ऐसी कंपनी बनाने की जहां लोग सिर्फ कर्मचारी ना हो, जहां उनका ख्याल रखा जाए, जो उनके पिता को नहीं मिला वो दूसरों को मिले। ये एक पर्सनल मिशन जैसा बन गया होगा।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही वो जड़ है स्टारबक्स की मशहूर पार्टनर फर्स्ट पॉलिसी की। वो सिर्फ एक कॉरपोरेट पॉलिसी नहीं थी, वो उनके निजी अनुभव से निकली थी। खैर, अपने शुरुआती करियर में उन्होंने जेरोक्स जैसी बड़ी कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग का अनुभव लिया। फिर स्वीडन की एक कंपनी थी हैमरप्लास्ट, उसमें जनरल मैनेजर बने।
और स्टारबक्स की एंट्री यहीं से होती है, कुछ कॉफी मेकर के ऑर्डर्स से।
हाँ, ये भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। 1981 में हैमरप्लास्ट में काम करते हुए उन्होंने नोटिस किया कि सिएटल की एक छोटी सी कॉफ़ी बीन कंपनी है स्टारबक्स, जो लगातार काफ़ी ज़्यादा ड्रिप कॉफ़ी मेकर्स ऑर्डर कर रही थी।
अच्छा, मतलब कुछ अजीब लगा उन्हें।
हाँ, कि भाई ये छोटी सी दुकान इतने कॉफ़ी मेकर्स का कर क्या रही है। इसी जिज्ञासा में वो सिएटल गए उनसे मिलने।
और पहली मुलाकात, क्या खास लगा उन्हें वहाँ?
वो हैरान रह गए। एक तो कॉफ़ी की क्वालिटी ज़बरदस्त थी और दूसरा, वहाँ जो लोग काम कर रहे थे उनमें कॉफ़ी को लेके एक अलग ही जुनून था, एक पैशन था। उन्हें लगा ये लोग सिर्फ कॉफ़ी बीन्स नहीं बेच रहे हैं, ये कॉफ़ी से प्यार करते हैं, कुछ तो खास है इस जगह में। और बस 1982 में वो मार्केटिंग और ऑपरेशंस डायरेक्टर बनके स्टारबक्स से जुड़ गए।
लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आना था, वो इटली वाली ट्रिप है ना?
हाँ बिल्कुल, 1983 में वो बिजनेस ट्रिप पर इटली गए, मिलान, और वहां उन्होंने देखे इटालियन एस्प्रेसो बार।
अच्छा,
और वो देखकर उन्हें एक तरह का, कह सकते हैं, यूरेका मोमेंट हुआ। उन्होंने देखा कि ये बार सिर्फ कॉफी पीने की जगह नहीं है, ये तो लोगों के मिलने जुलने, बातें करने, आराम करने की जगह है, एक तरह के कम्युनिटी सेंटर्स।
वो तीसरा स्थान वाला आइडिया, घर और काम के अलावा एक और अपनी जगह।
बिल्कुल, उन्हें लगा कि यही चीज अमेरिका में लानी चाहिए। स्टारबक्स को सिर्फ बेहतरीन कॉफी बीन्स बेचने वाली दुकान नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव देने वाली जगह बनाना चाहिए।
ये तो बड़ा विजन था, लेकिन क्या स्टारबक्स के जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे वो इसके लिए तैयार थे?
यहीं पर टकराव हुआ। जो मूल संस्थापक थे जेरी बेल्डविन, जेव सीगल, गॉर्डन बोकर, वो कॉफी के प्योरिस्ट थे। उनका फोकस था दुनिया की बेस्ट कॉफी बीन्स ढूंढना, उन्हें परफेक्शन से भूनना और बेचना, बस।
मतलब वो एस्प्रेसो बार वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे?
नहीं, उन्हें लगा कि ये उनके असली काम से ध्यान भटकाएगा। ब्रांड की जो एक प्योर इमेज है वो खराब होगी। वो रिटेल कैफे नहीं चलाना चाहते थे।
तो ये तो विजन का सीधा टकराव हो गया। शुल्ट्स का सपना कम्युनिटी और एक्सपीरियंस का, और फाउंडर्स का फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पर।
हाँ, और ये मतभेद इतने बढ़ गए कि आखिरकार शुल्ट्स को स्टारबक्स छोड़ना पड़ा। सोचिए कितना बड़ा झटका होगा।
यकीनन, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
नहीं, उन्होंने तय किया कि वो अपना ये विजन खुद पूरा करेंगे। उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की, नाम रखा इल जोर्नाले। ये इटालियन कॉफी बार के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित थी।
लेकिन नई कंपनी शुरू करना, खासकर जब आप एक जानी मानी जगह छोड़कर आ रहे हो, पैसा जुटाना तो बहुत मुश्किल रहा होगा।
बहुत मुश्किल। कहते हैं कि 242 इन्वेस्टर्स ने उन्हें ना कहा था।
242? बाप रे।
हाँ,
सोचिए, इतनी बार रिजेक्शन झेलना, ये दिखाता है कि अगर आपके पास सिर्फ एक विजन है तो उसे बेचने के लिए, अपनी कहानी बताने के लिए कितना जुनून और विश्वास चाहिए होता है।
खैर, कुछ शुरुआती निवेशक मिले उन्हें, उनके ससुर ने मदद की, एक लोकल डॉक्टर ने, और मजे की बात है कि स्टारबक्स के जेरी बाल्डविन ने भी थोड़ा निवेश किया। शायद उन्हें भी शुल्ट्स के आइडिया में कहीं ना कहीं दम लगा, और इल जोर्नाले चल पड़ा, कामयाब रहा।
और फिर कहानी में एक और मोड़ आया, स्टारबक्स बिकने वाला था।
हाँ, 1987 में स्टारबक्स के फाउंडर्स ने अपने रिटेल स्टोर्स और ब्रांड का नाम बेचने का फैसला किया। अब शुल्ट्स के सामने एक मौका था उसी कंपनी को खरीदने का जिसने उन्हें एक तरह से निकाला था, और अपने इल जोर्नाले वाले विजन को स्टारबक्स के नाम के साथ जोड़ने का।
पर यह भी आसान नहीं हुआ होगा, पैसे का इंतजाम?
बिल्कुल नहीं। उन्हें $3.8 मिलियन जुटाने थे, उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। और भी लोग थे जो स्टारबक्स खरीदना चाहते थे, एक रेस सी थी। लेकिन शुल्ट्स का विजन, उनका जुनून काम आया। बिल गेट्स सीनियर जैसे बड़े नाम भी उनके सपोर्ट में आ गए, और आखिरकार वो कामयाब हुए। उन्होंने स्टारबक्स को खरीद लिया और अपनी कंपनी इल जोर्नाले का उसमें विलय कर दिया।
और यहीं से उस स्टारबक्स का जन्म हुआ जिसे आज हम जानते हैं। अच्छा, तो कंपनी खरीदने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या बड़े बदलाव किए?
सबसे पहला और शायद सबसे इम्पोर्टेंट काम था कंपनी की संस्कृति को बदलना। उन्होंने कर्मचारियों को एम्प्लॉई कहना बंद कर दिया, उन्हें पार्टनर कहना शुरू किया।
पार्टनर मतलब सिर्फ नाम बदला या कुछ और भी था?
नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं था, ये एक सोच थी, और इस सोच को उन्होंने एक्शन में बदला। उन्होंने पार्ट टाइम कर्मचारियों तक के लिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस लागू किया।
पार्ट टाइम के लिए भी? ये तो उस वक्त रिटेल में सुना नहीं होगा किसी ने।
बिल्कुल अनसुनी बात थी। और फिर उन्होंने शुरू किया बीन स्टॉक प्रोग्राम, स्टॉक ऑप्शंस, यानी कर्मचारियों को कंपनी के शेयर्स खरीदने का मौका, कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदारी, उन्हें मालिक होने का एहसास दिलाया।
ये तो सीधा उनके पिता वाले अनुभव से जुड़ता है। वो चाहते थे कि उनके लोग वो महसूस ना करें।
एग्जैक्टली, वो असुरक्षा, वो बेबसी महसूस ना करें। ये रिटेल इंडस्ट्री के लिए तब बिल्कुल क्रांतिकारी कदम थे।
तो ये लोग पहले वाली बात सिर्फ कहने की नहीं थी, उसे उन्होंने सच में लागू किया।
हाँ बिल्कुल, उनका सीधा सा लॉजिक था, आप पार्टनर्स का ख्याल रखो, वो गेस्ट्स ग्राहकों का ख्याल रखेंगे, और बिजनेस अपने आप चलेगा। और फिर स्टारबक्स ने तेजी से फैलना शुरू किया, एक के बाद एक सैकड़ों नए स्टोर खुले।
लेकिन इतनी तेजी से बढ़ने में वो क्वालिटी, वो खास कल्चर बनाए रखना, ये तो चैलेंजिंग रहा होगा।
बहुत बड़ा चैलेंज। इसके लिए उन्होंने कई चीजें की। पार्टनर्स के लिए बहुत सघन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए गए। हायरिंग में सिर्फ स्किल नहीं बल्कि वैल्यूज पर भी जोर दिया गया कि क्या ये इंसान हमारी सोच से मेल खाता है। कॉफी बनाने की प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइज किया गया ताकि हर स्टोर में, हर कप में वही स्वाद, वही क्वालिटी मिले, लेकिन साथ ही स्टोर के डिजाइन वगैरह में लोकल टच भी रखा गया।
और फिर 1992 में कंपनी पब्लिक हो गई, स्टॉक मार्केट में आ गई। इसका क्या असर हुआ? अक्सर मार्केट का प्रेशर होता ना कि बस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिखाओ।
हाँ, वो प्रेशर तो था, लेकिन शुल्ट्स इस बारे में बहुत साफ थे। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म विजन और वैल्यूज पर टिकी रहे, ना कि हर 3 महीने के नतीजों के पीछे भागे। उन्होंने वो तीसरे स्थान वाले विजन को और मजबूती से लागू किया। स्टारबक्स सिर्फ कॉफी शॉप नहीं बनी, वो लोगों के लिए एक अड्डे जैसी बन गई, मिलने की, काम करने की, आराम करने की, एक स्वागत करने वाली जगह।
और कॉफी की क्वालिटी, वो कहीं पीछे तो नहीं छोड़ गई इस सब में?
नहीं, उस पर भी पूरा फोकस था। दुनिया की बेहतरीन अरेबिका बीन्स सोर्स करना, उनकी रोस्टिंग पे ध्यान देना, बरिस्ता की ट्रेनिंग, हर छोटी बड़ी चीज पर बारीकी से काम हुआ। स्टोर का माहौल कैसा होगा, म्यूजिक कौन सा बजेगा, कुर्सियां आरामदायक हैं या नहीं, ये सब मिलकर वो अनुभव बनाते थे।
एक और बात है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी, क्या ये शुरू से ही प्लान का हिस्सा था?
हाँ, और उनके लिए ये कोई चैरिटी या मार्केटिंग गिमिक नहीं था। जैसे कॉफी उगाने वाले किसानों के साथ नैतिक और लंबे समय तक चलने वाली पार्टनरशिप बनाना, CAFA प्रैक्टिसेस जैसा प्रोग्राम लाना, पर्यावरण का ध्यान रखना, अपनी कम्युनिटीज में इन्वेस्ट करना, ये सब उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी का हिस्सा था।
मतलब बिजनेस के साथ साथ समाज का भी भला हो।
बिल्कुल, और उनका मानना था कि इससे बिजनेस को भी फायदा होता है। सप्लायर्स के साथ अच्छे रिश्ते, मतलब भरोसेमंद सप्लाई, पर्यावरण का ध्यान, मतलब शायद लागत में कमी और अच्छी इमेज, कम्युनिटी का साथ, मतलब अच्छे कर्मचारी और वफादार ग्राहक, सब जुड़ा हुआ है।
तो अगर हम शुल्ट्स के मूल दर्शन, उनके कोर वैल्यूज को समेटना चाहें तो क्या कहेंगे?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है वो बैलेंस, जुनून और सपनों के पीछे भागना, लेकिन साथ ही इंसानी मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी को कभी न भूलना। शुल्ट्स ने ये कर दिखाया कि आप एक बहुत बड़ी, बहुत मुनाफे वाली कंपनी बना सकते हैं जिसका एक दिल हो, एक आत्मा हो।
और ये लोग पहले, मुनाफा बाद में, नतीजतन वाला फलसफा, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? उस वक्त तो ये बिल्कुल उल्टी सोच रही होगी।
हाँ बिल्कुल, तब रिटेल में क्या चलता था, कम तनख्वाह दो, लोग आते जाते रहेंगे। शुल्ट्स ने कहा नहीं, हम अपने लोगों में इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें पार्टनर मानेंगे, उन्हें अच्छी तनख्वाह, बेनिफिट्स, स्टॉक देंगे, वो खुश रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, ग्राहक खुश होंगे और आखिर में कंपनी को ही फायदा होगा। और ये सोच काम कर गई।
कर्मचारियों को कॉस्ट सेंटर नहीं, एसेट मानना, पार्टनर मानना, बीन स्टॉक जैसी चीजें इसी सोच से निकली।
हाँ, इससे एक शेयर्ड सक्सेस वाली भावना आती है, कंपनी आगे बढ़ेगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने इमोशनल कनेक्शन पर बहुत जोर दिया। वो जानते थे कि लोग सिर्फ कॉफी नहीं खरीदते, वो एक एहसास खरीदते हैं, एक माहौल खरीदते हैं। स्टारबक्स का ब्रांड सिर्फ कॉफी से नहीं बना, वो उस फीलिंग से बना, उस अपनेपन से बना जो उन्होंने क्रिएट किया।
और सामाजिक जिम्मेदारी को अलग से नहीं बल्कि बिजनेस के अंदर ही बुन देना।
हाँ, क्योंकि ये बिजनेस के लिए भी अच्छा है। एथिकल सोर्सिंग से सप्लाई चेन मजबूत होती है, पर्यावरण का ध्यान रखने से ब्रांड इमेज बनती है, शायद कॉस्ट भी बचती है, कम्युनिटी में इन्वेस्ट करने से लॉयल्टी बढ़ती है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा है।
उनके लीडरशिप स्टाइल में एक और चीज थी, वो अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी भावनाएं दिखाने से कतराते नहीं थे। क्या इससे लीडर कमजोर नहीं लगता?
पुरानी सोच तो यही कहती है, लेकिन शुल्ट्स मानते थे कि अपनी गलतियां मानना, अपनी भावनाएं शेयर करना आपको ज्यादा रियल, ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। लोग ऐसे लीडर से कनेक्ट करते हैं जो परफेक्ट होने का नाटक ना करे।
उनके कुछ कोट्स भी काफी मशहूर हैं जो उनकी सोच बताते हैं।
हाँ, जैसे वो कहते थे, वी आर नॉट इन द कॉफी बिजनेस सर्विंग पीपल बट इन द पीपल बिजनेस सर्विंग कॉफी, यानी हम कॉफी बेचने के धंधे में नहीं है जो लोगों को सर्व करता है, हम लोगों के धंधे में है जो कॉफी सर्व करता है।
प्राथमिकता साफ है, लोग पहले।
बिल्कुल। या फिर सक्सेस इज बेस्ट व्हेन इट्स शेयर्ड, सफलता का असली मजा तब है जब उसे बांटा जाए। ये सिर्फ शेयर होल्डर वैल्यू की बात नहीं, ये सभी के लिए वैल्यू बनाने की बात है, कर्मचारी, ग्राहक, सप्लायर, समुदाय।
और किताब का टाइटल ही है, पोर योर हार्ट इनटू इट, अपना दिल उसमें डाल दो।
हाँ, उनका मानना था कि अगर आप अपने काम में, किसी भी काम में अपना पूरा दिल लगाते हैं तो आप वो सपने भी पूरे कर सकते हैं जिन्हें दुनिया नामुमकिन समझती है। ये जुनून की, वैल्यूज पर टिके रहने की ताकत है।
इस पूरी कहानी में, इस लंबे सफर में कुछ मोड़ तो ऐसे आए होंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। आपके हिसाब से वो तीन सबसे अहम मोड़ कौन से थे?
पहला मेरे ख्याल से उनके पिता का वो एक्सीडेंट और परिवार का संघर्ष। जैसा हमने कहा, इसने उनके अंदर वो आग जलाई कि एक ऐसी कंपनी बनानी है जो अपने लोगों की परवाह करे। ये उनके एम्प्लॉई फर्स्ट या पार्टनर फर्स्ट फिलॉसफी की नींव थी। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं, एक कमिटमेंट था।
हाँ, ये तो वाकई बहुत गहरा असर था। और दूसरा, शायद वो इटली वाली ट्रिप।
हाँ बिल्कुल, मिलान में वो एस्प्रेसो बार का अनुभव, वो एपिफनी, वो ज्ञान का क्षण, जब उन्हें समझ आया कि कॉफी बार सिर्फ कॉफी की दुकान नहीं, वो एक तीसरा स्थान है, एक कम्युनिटी स्पेस है। इस एक आइडिया ने स्टारबक्स की पूरी दिशा बदल दी, प्रोडक्ट से एक्सपीरियंस की ओर।
सही।
और तीसरा टर्निंग पॉइंट
वो था 1987 में शुल्स को स्टारबक्स को एक्वायर करना, उसे खरीद लेना। सोचिए, जिस कंपनी से आपको निकाला गया उसी को खरीदने का रिस्क लेना, ये उनके विजन में उनके अटूट विश्वास को दिखाता है। ये वो मोमेंट था जब उन्हें अपने सपने को पूरी तरह से सच करने का कंट्रोल मिला। इन तीनों ने मिलकर शुल्स और स्टारबक्स की कहानी गढ़ी।
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, इस पूरी कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं?
देखिए, सबसे पहली सीख तो है मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने की। शुल्स की कहानी दिखाती है कि आपकी शुरुआत कैसी भी हो, अगर इरादा पक्का है, मेहनत है और एक क्लियर विजन है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हाँ, विजन की ताकत तो साफ दिखती है। तीसरा स्थान जैसा एक आइडिया कैसे पूरी कंपनी को दिशा दे सकता है, लाखों लोगों को उससे जोड़ सकता है।
बिल्कुल। और दूसरी अहम बात है उसूलों और प्रैक्टिकलिटी के बीच बैलेंस बनाना। शुल्स ने ये करके दिखाया। एम्प्लॉई बेनिफिट्स पर खर्च करना एक वैल्यू बेस्ड फैसला था, लेकिन कंपनी को पब्लिक ले जाना एक प्रैक्टिकल कदम था। ये दिखाता है कि आप दिल और दिमाग दोनों से काम करके सफल हो सकते हैं।
काम में सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक मतलब, एक पर्पस ढूंढना, ये भी एक बड़ा सबक है शायद।
हाँ बिल्कुल। ये कहानी याद दिलाती है कि बिजनेस सिर्फ पैसा बनाने की मशीन नहीं है, ये समाज पर पॉजिटिव असर डालने का एक जरिया भी बन सकता है। जब काम में एक बड़ा मकसद जुड़ जाता है तो वो सिर्फ नौकरी नहीं रहता, एक मिशन बन जाता है।
और वो 242 बार ना सुनने वाली बात, वो तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए या कुछ भी नया करने वाले के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। रिजेक्शन से डरना नहीं, सीखते जाना।
निश्चित रूप से। ये कहानी सिर्फ बिजनेस के छात्रों के लिए नहीं है, ये लीडरशिप के बारे में है, टीम बनाने के बारे में है, अपनी वैल्यूज पर टिके रहने के बारे में है और अपने काम में अर्थ खोजने के बारे में है। हर किसी के लिए इसमें कुछ न कुछ है।
चले इस सारी बातचीत को तीन मुख्य बातों में समेटते हैं। पहला, एक इमोशनल लेवल पर क्या सीख मिलती है?
इमोशनल इनसाइट ये है कि अपने काम के लिए सच्चा पैशन, मतलब दिल से किया गया काम, जैसा किताब का टाइटल भी कहता है, वो वाकई कमाल कर सकता है। और पर्सनल एक्सपीरियंस से निकली एम्पैथी, जैसे शुल्स ने अपने पिता के संघर्ष से सीखा, वो आपको न सिर्फ बेहतर इंसान बनाती है बल्कि आपके लीडरशिप को ज्यादा मानवीय, ज्यादा असरदार बनाती है। दिल का रोल बहुत बड़ा है।
और इंटेलेक्चुअल लेवल पर, मतलब दिमागी तौर पर या स्ट्रेटजी के तौर पर क्या सीखा?
इंटेलेक्चुअल इनसाइट ये है कि लोग पहले रखना सिर्फ अच्छी बात नहीं, ये एक बहुत स्मार्ट बिजनेस मॉडल है। अपने कर्मचारियों में इन्वेस्ट करना, उन्हें पार्टनर समझना, इसका सीधा असर परफॉर्मेंस पर, लॉयल्टी पर, कम एट्रिशन रेट यानी लोग नौकरी कम छोड़ते हैं, पर बेहतर कस्टमर सर्विस पर और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर पड़ता है। ये सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं, रणनीतिक रूप से भी ब्रिलियंट है।
बिल्कुल। और आखिर में एक यूनिवर्सल सीख जो हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं।
यूनिवर्सल इनसाइट ये है कि असली ऑथेंटिक रिश्ते बनाना, चाहे वो अपने सहकर्मियों से हो, ग्राहकों से या अपनी कम्युनिटी से, और अपनी वैल्यूज को सिर्फ कहना नहीं बल्कि रोजमर्रा के एक्शन में उतारना, यही एक स्थायी और मीनिंगफुल सफलता की कुंजी है। और जैसा शुल्स ने कहा, सफलता तब सबसे अच्छी लगती है जब उसे बांटा जाए। ये शेयर्ड वैल्यूज और शेयर्ड सक्सेस का सिद्धांत है जो सिर्फ बिजनेस नहीं, जीवन के हर पहलू में काम आता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।